والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ باغ میں چمن میں تین قسم کی مخلوق جاتی ہے، ایک تو وہاں پر خنزیر اور سور جاتا ہے جس کو باغ کی رنگینی سے، باغ کے ہرے پتوں سے، پھولوں کی خوشبوؤں سے، پھولوں کے رنگ سے اور باد صبا اور باد سرسر اور باد صبا ان چیزوں سے، نسیم سحری سے کوئی مطلب نہیں، یہ سب صبح کی ہوا کے نام ہے، باد صبا بولے، باد سرسر بولے یا نسیم سحر، یہ صبح کی ہوا کو، یعنی صبح کی تازہ ہوا کے جھونکے، اس کا ترجمہ ہے. اب سور اور خنزیر کو ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں، وہ پورے چمن میں جا کر غلاظت اور گندگی کو تلاش کرتا ہے کہ کہاں نجاست اور پیخانہ ہو، تو لائٹ جلا دو ادھر، ہاں جلا، کہ جہاں نجاست اور پیخانہ ہو پورے چمن میں اور پورے باغ میں وہ اسی کو تلاش کرتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جس زمانے میں کھیتوں میں استنجا وغیرہ کرتے تھے تو سور بھی وہی موجود رہتے تھے، وہ گھسنے کی کوشش کرتے تھے. ہمارا دیہاتی جیسے ہی استنجا کر کے اٹھتا فوراً سور گرما گرم کھانے پہنچ جاتا. اور فرمائے کہ باغ میں اور چمن میں جانے والی جو دوسری قسم کی مخلوق ہے وہ ہے یہ بھیڑ بکری گائے بھینس، کہ جو نجاست کو تو کی طرف تو نہیں جاتی اور ان کو بھی پھولوں کے رنگ اور خوشبو سے اور تازہ ہوا اس کے جھونکوں سے مطلب نہیں، اس کو پتوں سے سبزے سے یہ مطلب ہے، وہ کھاتی. اور فرمایا کہ باغ میں تیسری قسم کی مخلوق جو جانے والی ہے وہ ہے انسان. انسان باغ میں جاتا ہے، پھولوں سے، پھولوں کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتا ہے اور پھولوں کے رنگ سے مست ہوتا ہے اور باد صبا اور باد نسیم صبح کی ہوا سے جھونکے سے آکسیجن حاصل کر کے صحت حاصل کرتا ہے اور قسم ہا قسم کے، رنگ ہا رنگ کے پھولوں سے اور قسم ہا قسم کی خوشبوؤں سے مست اور خوش ہوتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ چمن بھی، یہ دنیا بھی چمن کی طرح ہے، اس میں بھی آنے والے جو انسان ہے وہ تین قسم کے ہیں. ایک انسان وہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد صرف بدماشی بنایا ہے کہ شراب پیو، زنا کرو، بدماشی کرو، لڑکوں سے منہ کالا ہے، بے حیائی کے سارے کام، جس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنایا ہے کہ بس مال کماؤ اور اس مال کو بس خرچ کرو اور خرچ کرنے کا بھی مصرف کیا، بس یہ زنا، بدماشی، لڑکوں سے منہ کالا کرنا، شراب، بس زندگی اس طرح سے اپنی ختم کرنے کی طرف درپے ہونا. لہذا وہ پیر سے لے کر جمعے تک کام کرتے ہیں یا مہین کام کرتے ہیں صرف پیسے کے لیے. جیسے جب یہ نئی نئی فلمیں آئی نا، سینما کا چلا तो कितने लोगों ने ऐसा बताया कि हम मजदूरी इसलिए करते थे कि रात को फिल्म देख सके, है ना? सारा दिन मजदूरी सब इसलिए रात को फिल्म देख सके। अब भी है, अब भी है ऐसे लोग कि जिनका होता है कि बस मैं फिल्म देखना और ये सब, ये इस काम के लिए सारा दिन मजदूरी करके शाम को सब इसलिए कि हम अपनी बदमाशी कर सकें। यह नाऊज़ बिल्ला, खुदा ना खास्ता, ये शराब का नशा, नशे का नशा है, किसी किस्म के नशे का आदि बन गया। अब उसकी मजदूरी और उसकी मेहनत का मकसद ये होता है कि बस मैं ये करूं काम। किसी को बदफेली की आदत है लड़कों से, या जिना बदमाशी की आदत है, तो वो कमाता भी इसलिए कि मैं ये हासिल कर सकूं, ये इसकी जिंदगी है। और फरमाए कि दूसरी किस्म की जिंदगी ये है कि ऐसे शरीफ लोग हैं, मुसलमान तो मुसलमान, काफिरों में भी, कि जो इसको अच्छा नहीं समझते, कहते अच्छी चीज नहीं, अखलाक बाख्ता हरकतें, हया सोज हरकतों को, वो भी तबाही, एक शराफत एक चीज होती है जो मुसलमान तो मुसलमान, काफिर में भी होती है। लिहाजा उस तबाही शराफत की वजह से वो इसको पसंद नहीं करता कि ऐसी बेहुदा हरकत की जाए। उसने अपनी जिंदगी का मकसद उस जानवर की तरह बनाया है कि जो सब्जा खाता है, फिर मैंगनियां करता है, फिर खाता है, फिर मैंगनियां करता है, और अभी पेट भरा होता है, बस उसको हलहेड़ होती है कि मैं और खा लूं, और उस खाने में अगर कोई और जानवर मुंह डाल दे तो उसको ऐसे टक्कर मारता है। ये वो जानवर है, पर इसका भी यही हाल है कि बस इसको माल से मतलब है, फैक्ट्री हो जाए, गाड़ियां हो जाए, रुपया हो, पैसा हो, ये। एक साहब ने किसी के इश्क में मुब्तला हुए, और इब्तला का तरीका कार ये हुआ कि लड़की आई, वो गैर मुल्की थी और यहां पढ़ रही थी, तो उसने कहा कि मैं बहुत मजबूर हूं, जरूरतमंद हूं, मेरे लिए कुछ अगर जॉब मिल जाए मुझे। उन्होंने तरस खाकर, रहम खाकर उसको अपने आप अपनी सेक्रेटरी रख लिया। क्यों? तरस खाकर और रहम खाकर, और ये रहम खाकर जो इस रहम की पहुंच है वो मादर रहम तक होती है, रहम मादर, रहम मादर वहां तक पहुंच। और उसका आला एकार आपको पता है क्या चीज बनती है, उस तक रसाई का जरिया क्या चीज है, ये रहम की हकीकत है। अब उस लड़की, वो दूसरे मुल्क की और थी भी मुसलमान नहीं, मसला याद रखिएगा, सुन्नी की राफजिया से शादी नहीं हो सकती, ये जिसको शिया बोलते हैं, लेकिन इल्मी एतबार से शिया और राफजी में फर्क है, फर्क है। राफजी उस सड़े हुए खबीस शिया को कहते हैं जो सहाबा, खुसूसन खलीफा अव्वल, खलीफा दोम, इन हजरात पर तबर्रा करना, मुगल्लिजात, बकवासियात बकना, ये असल में राफजियों का काम है। और जो इल्मी एतबार से जो शिया थे, असल में ये वो लोग थे जो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करते थे, लेकिन दूसरे सहाबा को बुरा भला नहीं कहते थे, यानी सहाबा की इज्जत करते थे, बस अहले बैत से हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के खानदान से उनको मोहब्बत ज्यादा, और ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, अगर इस हैसियत में हो तो ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हमारे उलमा और इन हजरात ने उनको, उन पर कोई ऐसी नकीर नहीं की, बस उनके लिए हद रखी कि आप दूसरे साहबा की आजमत करें, इज्जत करें, और अगर आपको किसी से मोहब्बत ज्यादा है तो कोई ऐसी बात नहीं है। अहले बैत की मोहब्बत बहरहाल हमारे लिए भी ईमान है, अगर इसी का नाम शियत है तो ऐसे शिया तो हम भी बने कि अहले बैत की मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की मोहब्बत अल्लाह ताला हमको सबको भी कमाल दर्जे में नसीब करे। लिहाजा इस एतबार से शिया होना कोई इतनी बुरी बात निश्चय नहीं। लेकिन अब राफजी और शिया का फर्क लोगों को मालूम नहीं है। इन राफजियों में भी यानी शिया में ऐसे लोग हैं जो कि साहबा को कुछ नहीं कहते और बुरा भी समझते हैं कि साहबा को कुछ ना कहो, यानी हजरत खलीफा अव्वल और वो ऐसे भी है इनमें। मतलब ऐसे हजरत के बारे में इल्मी तौर पर फतवा कुफ्र का नहीं है, मतलब हर शिया काफिर नहीं होता, हर शिया काफिर नहीं होता, और जिसकी शियत राफजियत में चली जाए तो बिल इजमा वो काफिर है, उसके ला शक का फी कुफर हिम, इन लोगों के कुफर में कोई शक नहीं है, जो ना माने सही है ना। खैर ऐसा नहीं है। बहरहाल तो ये तो मुसलमान की, अब चूंकि इस जमाने में कोई फर्क इस फर्क को आमतौर पर नहीं लिया जाता, लेकिन बहरहाल ये एक इल्मी तहकीक है और इल्मी हकीकत है ये चीज है। अगर वो शिया बहरहाल चूंकि उसकी शियत आजकल राफजियत का, अगर वो राफजी है तो उससे तो किसी सूरत में मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता, मर्द का ना औरत का, और अगर वो शरीयत की तरफ मायल है उस एतबार से तो उससे तो बहरहाल चूंकि वो कुफर में दाखिल नहीं है, निकाह तो हो सकता है लेकिन एहतियात बेहतर अस्त, ये एक अलग बात, तो बहरहाल सुनने का नहीं हो सकता। तो वो साहब मोहब्बत रहम खाए, रहम खाकर मोहब्बत में गिरफ्तार हुए। अब उस औरत का काम यह था बस माल मुंतकिल करना अपने मुल्क में, यहां से माल लो वहां दो, ये प्रॉपर्टी थी वो बेची, वो करे वो करे, उनको भी पता है। उन साहब ने बड़ा काम जगह जगह जमाया, जनवरी से जून तक कमाते, जून तो सब माल लपेट के वहीं मुंतकिल, कराची में रहे, यहां करोड़ों करोड़ों रुपए मेरे ही सामने, ये तो पुरानी समझे 90 के जमाने से जो कहानी चल रही थी वो तो, और मेरे ही सामने करोड़ों रुपए मुंतकिल हो गए। अल्लाह की शान के उस औरत को कैंसर हुआ और इलाज हुआ, बहरहाल वो मर गई, सारा पैसा वापस। अब वहां के कानून ऐसा वो पैसा नहीं ले सकते, तो समझाने की बात क्या है, इबरत की चीज क्या है कि न उस औरत को पैसा मिला, न पैसा मिला न काम आया, कैंसर में मरी, न पैसा मिला न काम आया, न इस मर्द को पैसा मिला न काम आया। जा बेटा बंद कर दे, ये समझाने की बात है कि माल की हकीकत कैसी, करोड़ों रुपए बिलाशुबा करोड़ों रुपए उसने रखे, मुंतकिल किए, वहां के बैंकों में रखे कि सूद खाते रहेंगे जो भी बहरहाल, लेकिन मैं उसके नतीजे पर की बात कर रहा हूं कि कितने करोड़ों रुपए कमाए, आखिर में कुछ भी नहीं मिला, ना इसको ना उसको, अब ये भी महरूम वो भी महरूम। तो ये है दुनिया, कितना ही इंसान माल कमा ले, कितना ही माल जमा कर ले, लेकिन अंजाम के एतबार से ये माल किसी काम के आने वाला नहीं, इस माल की कितनी अजीब बात यह है कि इंसान अगर बीमार हो जाए और चाहे कि मैं इस माल के जरिए से सेहत हासिल करूं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। घुटने में दर्द है, घुटना बदल जाएगा, सेहत नहीं मिल सकती। और अगर माल के साथ शुगर ब्लड प्रेशर लग गया तो उसको शुगर ब्लड प्रेशर की दवा इंजेक्शन खरीद सकता है, खा सकता है, लेकिन सेहत नहीं ले सकता। इस माल की हकीकत को समझाया। अलबत्ता वो माल जो काम का है वो माल वो है कि जो अल्लाह ताला के रास्ते में लग गया वो माल काम का है। तो दुनिया में आने वाले दूसरे लोग वो हैं जिन्हें अपनी जिंदगी का मकसद खाओ, लेटरिन में जमा करो, माल जमा करो, खूब माल जमा करो, नया मोबाइल है बस वो ले लो, अच्छा चश्मा आया वो ले लो, जूते आए वो ले लो, कपड़े आए वो ले लो, बस ये चक्कर है और इसी चक्कर के पीछे हमारी दौड़ है। ये दूसरी किस्म के लोग और हजरत वाला रहमतुल्लाह फरमाते हैं तीसरी किस्म के लोग हैं जो इस कायनात में दुनिया में आते हैं, एक एक चीज पे गौर करते, देखो मेरे अल्लाह ने सूरज कैसा बनाया, कैसे तुलू होता है, किस तरह चलता हुआ वो गौरव हो जाता है। गर्मी के जमाने में खत इस्तिवा पर चलता है, सर्दी के जमाने में जुनूब ब माइल हो जाता है, माइल ब जुनूब हो जाता है, यानी साउथ और जुनूब की तरफ माइल हो जाता है। इसलिए हमारी सर्दी के जमाने में वहां गर्मी होती है और हमारी गर्मी के जमाने में वहां सर्दी होती है। इस वक्त जुनूब का इलाका जो दुनिया का है वहां ठंडक है क्योंकि सूरज उनसे दूर हो गया, सूरज दूर हो गया अब वो ठंडे हो गए। और ये खत्ते इस्तेवा पर चलने वालों के यहां जो जो खत्ते इस्तेवा पर रहते हैं, एक तो वहां बारिशें बहुत होती है और दूसरा मौसम मोतदिल होता है, बल्कि खत्ते इस्तेवा पर रहने वालों के यहां सर्दी इतनी खास नहीं आती सूरज की जैसे। और खत्ते इस्तेवा के जो करीब है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग खत्ते इस्तेवा पर तो नहीं है लेकिन हम उसके करीब हैं। खत्ते इस्तेवा मुराद है वो आप देखिएगा, एक लाइन है अगर दुनिया का नक्शा तो उसको इक्वेटर भी बोलते हैं, बीच में एक लाइन है वो व्यवस्थ दुनिया। ये सूरज की जो रूट है ये वो है समझे आप, और गर्मी में सूरज यहां पर चलता है, सर्दी में जुनूब की तरफ माइल हो जाता है। तो इसलिए देखिए सूरज जरा दूर भी होता है और नीचे की तरफ होता है, गर्मी में सर पे खड़ा होता है, खोपड़ी पिघलाता है, ये सूरज है। तो देखता है कि अल्लाह ताला का सूरज कैसा वक्त पे निकला, अपने रूट पर चलता हुआ वक्त पर गुरूब हो गया। चांद है कैसे निकलता है, किस तरीके से वक्त पर सूरज और चांद दोनों फलक में चल रहे हैं, लेकिन कैसे अल्लाह ताला ने रूट बनाया, किस तरह अल्लाह ताला खाद के जरिए से कैसे रंगीन फल, रंगीन फूल, खुशबूदार फूल पैदा फरमा रहे हैं। और अल्लाह ताला ने मेरे लिए कितनी नेमतें रखी, वो इन चीजों को इदराक करके, इन चीजों को सीख कर वो अपनी बंदगी के मकसद उस नुक्ते को बनाता है कि मुझे अपने मालिक को राजी और खुश करना है। ये नुक्ता उसकी बंदगी का मकसद है कि मुझे अपने मालिक और पालने वाले को राजी और खुश करना है। ये नुक्ते पर बात आ गई कि मुझे मकसद ये बनाना है। अब उसकी रिदार खुशी के लिए क्या चीजें हैं और उसकी नाराजगी की क्या बातें हैं, उन चीजों पर अमल करना और इससे बचना, ये उसके जिंदगी का नस्पुल आयन और ये उसकी जिंदगी का महवर होता है। और वो सुन्नत उसका महवर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, मैंने उस पर चलना है। और गुनाह से बचने में मेरा दिल टूटे, मेरे नफ्स को तकलीफ हो, मुझे तकलीफ हो, सारा जहां सारा आलम नाराज हो, लेकिन मुझे अपने मालिक और पालने वाले को राजी और खुश करना है, ये है वो मकसद जो उस बंदे का होता है। इस शख्स को अल्लाह ताला शरफ इंसानियत का मियाराज अता फरमाते हैं, शरफ इंसानियत का कमाल अता फरमाते हैं। और ऐसे ही लोग हैं जिनको औलिया अल्लाह कहा जाता है और अहलुल्लाह कहा जाता है। और ये वो लोग हैं कि जो इस दुनिया के कमालात, दुनिया के खजानों के का जो हकीकत है वो इन पर मुनकशिफ होती है। जिस चीज को वो खजाना समझ रहे ना, वो हकीकत में सवे का ऐसा ही है कि जैसे पत्ते पर जो है वो जिंदगी गुजारना, अगरचे पत्ता सब्ज है, रंगीन है, खुशबू भी है, जायका भी है, लेकिन उस अंगूर के कीड़े के पत्ते का कि अंगूर के पत्ते पर है, ये अंगूर से महरूम है। तो इसी तरह से ये अल्लाह ताला की मखलूकात से इस्तेफादा कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, लेकिन खालिद से महरूम है, दादा इनकी जिंदगी है। अब ये बा मकसद जिंदगी ये काम के, बाकी दोनों जिंदगी नामकामी की। एक ये जिंदगी है जो इस दुनिया की तखलीक का मकसद ही है, हमारा दुनिया में आने का मकसद ही है कि हम अपने रब को राजी करें, खुश करें। तो उस पर अल्लाह ताला जो इनामात रखे और वो इनामात दुनिया में मेरे मुर्शिद फरमाया करते हैं ऐसी जिंदगी के बादशाह क्या जा रहे हैं। और उसकी बड़ी दलील क्या कि बादशाह अल्लाह वालों की जूती उठाते हैं, लेकिन कोई अल्लाह वाला बादशाह की जूती कभी नहीं उठाना, तो दूर की बात निगाह उठा के नहीं देखता, कोई चीज उसके पास इजाफी है। बस इस मकसद को पूरा करने के लिए अब बामकसद लोगों के साथ रहेगा तो मकसद पर चलेगा, और बेमकसद लोगों के साथ रहेगा तो अपनी जिंदगी मकसद से दूर हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फर्ज फरमाए, अपनी जिंदगी का नुक्ता बनाए कि करना क्या है। और जो जिंदगी गुजर गई गुजर गई, लेकिन अब उस नुक्ते पर आए, और वो नुक्ता जो अल्लाह ताला का पसंदीदा नुक्ता है वो है अल्लाह ताला को राजी और खुश करना और उसको नाराज ना करना, ये बंदगी। अल्लाह हम सब पर अपना फर्ज करना और अपने करम से हकीकत बंदगी को हम पर मुनकशिफ फरमाए। क्या हजरत का शेर है, सुभान अल्लाह, हकीकत बंदगी की है यही, ऐ दोस्तों सुन लो, हकीकत बंदगी की है यही, ऐ दोस्तों सुन लो, दिले पुर आरजू रखते हुए बे आरजू रहे। कितनी खूबसूरती से और कितने दर्द से हजरत ने जिंदगी के मकसद को बयान फरमाया कि हकीकत बंदगी की है यही, ऐ दोस्तों सुन लो, हकीकत बंदगी की है यही, ऐ दोस्तों सुन लो, दिले पुर आरजू रखते हुए बे आरजू रहना। यानी ये उस गोया के जिसको दुनिया मुल्ला बोलती है उस मुल्ला की मिसाल है, यानी मुल्ला बेहिस है, इसको न औरतें न माल नजर नजन किसी चीज की गोया इसको तलब ही नहीं है, ये कैसा आदमी है, इसको कुछ परवाह नहीं है, बेहिस है। और हकीकत में वो बेहिस नहीं है, उसको सब एहसास है, उसका भी दिल चाहता है औरतों की तरफ कशिश, माल की तरफ कशिश, हर चीज की तरफ उसको भी जाज़बियत होती है, जज्ब होता है। लेकिन अल्लाह ताला जो सबसे बड़े जज्जाब है, खींचने वाले, उनसे बढ़कर कशिश किसी में नहीं है, वो जो कशिश है तो देखने वाले को ऐसा लगता है बेहिस है, हकीकत में बेहिस नहीं है, देखने वाले को लगता है कि इसके अंदर आरजू ही नहीं है, ऐसा नहीं है, दिले पुर आरजू, ये क्या रखते हैं, दिले पुर आरजू, आरजू से भरा दिल रखते हैं, लेकिन अपनी आरजू को अपने ख्वाहिशात को चूंकि अल्लाह पर फिदा किया है, तो उस फिदाकारी की वजह से कि मुझे अपने, उन्होंने अपनी जिंदगी का नस्म उलान बनाया कि मुझे अल्लाह को राजी और खुश करना है, और दिले पुर आरजू है, ऐसा नहीं है कि ख्वाहिश नहीं है, लेकिन बस किसी की मोहब्बत ने इनका यह हाल कर दिया, किसी की मोहब्बत ने यह हाल कर दिया। अल्लाह ताला अपने काम सब सबको अपनी मोहब्बत का बनना और अल्लाह ताला अपनी रिदा और खुशी की जिंदगी नजर आखिर उदावान अल्हम्दुलिल्लाह।